नमस्ते भोपाल, मैं हूँ आरजे कशिश और आप सभी का स्वागत करती हूँ सरोजनी नायडू रेडियो स्टेशन में। तो कैसे हैं आप सब और कैसा लग रहा है आप लोगों को हमारा शो? हाँ, पता है आप सब कोरोना की इस थर्ड वेव को लेकर बहुत परेशान हैं। थोड़ा डरिए भी, बट डरिए मत। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी कि ये जो हमें मौका मिल रहा है सबके साथ रहने का, एक साथ टाइम स्पेंड करने का, इसको इंजॉय कीजिए। क्योंकि नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव न्यूज आएंगी, तो थिंक पॉजिटिव ऑलवेज बट बी नेगेटिव। देखा, आप लोगों से बात करते करते मैंने कितना अच्छा विचार आप सभी के साथ शेयर किया। कितना अच्छा लगता है ना अगर ऐसे ही हम लोग हर रोज़ की शुरुआत एक अच्छी सोच के साथ और अच्छे विचारों के साथ करें तो। और इसी विचार के साथ मैं भी सोच रही हूँ कि आज के इस शो की शुरुआत हमें एक अच्छी सोच और अच्छे विचार के साथ करना चाहिए। तो चलिए कुछ अच्छे विचार सुन लेते हैं। और ये विचार लेके आ रही हैं क्लास 11 से अदिति यादव।
इतना मत बोलिए कि लोग चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग दोबारा बोलने का इंतजार करें।
बहुत बहुत धन्यवाद आर्य अदिति को हमारे शो को इतने अच्छे सोच और अच्छे विचार के साथ शुरू करवाने के लिए। जो हम लोगों ने एक नया वर्ड सीखा, लॉकडाउन, इसके बारे में आप सबका क्या सोचना है? जैसे कि मुझे तो ये लॉकडाउन वर्ड समझते समझते एक महीना लग गया कि ये है क्या चीज़। पर अभी देखिए, मैं इस लॉकडाउन वर्ड का सबसे ज़्यादा एडवांटेज लेती हूँ, क्योंकि सोचिए पूरे दिन घर पर बैठ के हम लोग कितना कुछ कर सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में तो कोई फील्ड में कितने अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये लॉकडाउन ने एक नई उड़ान दी, एक नई पहचान दी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आरजे बन सकती हूँ, पर आज मैं हूँ। जिंदगी का सफ़र शायद ऐसा ही होता है, कब कहाँ कौन से रास्ते पर लेके चले जाए पता ही नहीं चलता। जैसे अभी मुझे आप सभी से बात करते करते कविता सुनने का दिल कर रहा है, पर देखिए लॉकडाउन के पहले मैं कविता कभी पढ़ती ही नहीं थी, पर अभी मन कर रहा है। खैर, इस लॉकडाउन के ऊपर कई लंबे डिस्कशन चलते रहेंगे, बट उसके पहले जब दिल किया तब एक बहुत ही प्यारी कविता सुन ही लेते हैं। मुझे पता है आप लोगों को भी मन कर रहा होगा कविता सुनने का, है ना?
आज का हमारा शीर्षक है मेरा देश महान बने। एक देह हो, एक श्रेय हो, एक समान विधान बने, मेरा देश महान बने। एक देश हो, एक वेश हो, प्राणवान हो, सद उद्देश्य हो, एक ध्यान हो निज गुरुता का, एक हिमालय सी उठान हो, मरण एक हो, वरण एक हो, जीवन एक समान बने, मेरा देश महान बने। सिंहों से लड़ने वाला हो, अवसर पर अड़ने वाला हो, हंसते हंसते मौत मसल कर आसमान चढ़ने वाला हो, वज्र बने दुश्मन को, प्रिय को फूलों की मुस्कान बने, मेरा देश महान बने। उठे देश के लिए उठे हम, जिए देश के लिए जिए हम, गले देश के लिए गले हम, मरे देश के लिए मरे हम, तन में मन में यही ध्यान हो, भारत महिमावान बने, मेरा देश महान बने।
मेरा देश महान है। सच्ची में हमारा देश महान है। प्रकृति का हर रूप देखने को मिलेगा हमारे देश में। सिर्फ वही नहीं, इस कठिन परिस्थितियों में जिस तरह हमारा देश, हर लोग एक दूसरे का सहारा बने हैं, एक चीज़ तो साबित है, मेरा देश महान है। हाँ हाँ, मुझे समझ में आ रहा है कि ये कोविड, लॉकडाउन, ये सारी चीज़ माहौल को थोड़ा गंभीर बना देती है। पर मैं आरजे कशिश कभी भी आप लोगों को गंभीर रहने नहीं दूंगी, इसलिए चलिए माहौल को थोड़ा हल्का करते हैं आरजे रिया के जोक्स के साथ।
एक बार की बात है, एक बच्चा गायब हो गया। किसी ने उसका फोटो व्हाट्सएप पर डाल दिया कि बच्चे को ढूंढने के लिए फोटो फॉरवर्ड करें। शाम को बच्चा वापस आ गया, लेकिन आज एक साल हो गया और उसका फोटो अभी भी फॉरवर्ड हो रहा है। बच्चा जहाँ भी जाता है लोग उसे पकड़कर उसके घर छोड़ जाते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आरजे रिया को इतने अच्छे से हमारे लिसनर्स को हंसाने के लिए। इस माहौल को अलग अंदाज देने के लिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते हम जिस बारे में बात कर रहे थे उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो बेसिकली ये लॉकडाउन होता क्या है? लॉकडाउन शब्द का अर्थ है शेल्टर इन पीस, मतलब लॉकडाउन एक आपातकालीन व्यवस्था है जो किसी महामारी के टाइम लागू किया जाता है। जिस तरह किसी संस्था या फैक्ट्री को बंद किया जाता है और वहाँ तालाबंदी हो जाती है, उसी तरह लॉकडाउन का अर्थ है कि आप अनावश्यक काल के लिए साधकों पर ना निकलें। लॉकडाउन मेनली जनता की सहूलियत और सुरक्षा के लिए किया जाता है। पता है मुझे कि ये सारी चीज़ें हमें बहुत ही उदास कर देती हैं, बट उदास मत होइए, ये कठिन पल है जो हम ज़रूर पार करेंगे, और ये विश्वास रखिए आप। और इस विश्वास के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे मन को शांत करते हैं एक अच्छे श्लोक के साथ। और वो श्लोक लेकर आ रही है क्लास 9 से आरजे काजल।
जल बिंदु निपातन क्रमशः पूर्यते घट सहेतु सर्वविधानां धर्मश्च धनश्च च। अर्थात जिस तरह जल की एक एक बूंदें गिरने से घड़ा भरता है, वैसे ही विद्या होती है, थोड़ी थोड़ी अर्जित करने से धन और धर्म भी प्राप्त हो जाता है।
शुक्रिया आरजे काजल को इतने अच्छे श्लोक और उसके अर्थ बताने के लिए, और उसके साथ साथ हमारे श्रोताओं को एक शांत वातावरण देने के लिए। चलिए अब ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और जान लेते हैं कुछ ज्ञान की बातें।
सपने में आने वाले हर एक चेहरे को हमने एक बार जरूर देखा होता है। खुशी का पहला आंसू दाहिनी आंख से और दुख का पहला आंसू बाईं आंख से निकलता है।
ज्ञान की बातों के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ सरोजिनी नायडू रेडियो स्टेशन पे। पता है आप सभी को, हमें हमेशा एक बात जरूर याद रखनी चाहिए कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जैसे कि कोरोना और लॉकडाउन। ये शब्द ऐसे हैं जो हमें एक तरफ उदास कर देते हैं तो एक तरफ खुश कर देते हैं। लॉकडाउन का असर हमारे पर्यावरण पे बहुत अच्छा हुआ। सिर्फ यही नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इस लॉकडाउन ने एक नई दिशा दिखाई, और उस दिशा के साथ हम सब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे ऐसा कुछ जो हम लोग को पता है पर समझ नहीं पाते। जैसे कि सोचिए हमारी पढ़ाई, हमारे पास बहुत सारे टॉपिक हैं जिसको हम जानते हैं बहुत अच्छे से बट समझ नहीं पाते। और ऐसे ही एक सब्जेक्ट को लेकर आ रही हैं क्लास 11 से आरजे मुस्कान।
व्हाट इज ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रेविटेशन के कारण ही हम खड़े हैं, बैठे हैं, या बिल्डिंग्स जितनी भी खड़ी हैं सब सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ही खड़ी हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन को तो कौन नहीं जानता, सभी जानते चाहे वो पढ़ते हों या ना हो। फिजिक्स की दुनिया में न्यूटन को फिजिक्स का भगवान कहते हैं। उनके दिए गए कुछ नियम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसके अकॉर्डिंग F is directly proportional to the product of mass of earth and object, and F is inversely proportional to the distance between earth and object. मतलब कि जो फोर्स लग रहा है वो मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ ऑब्जेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जैसे मास ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ेगा वैसे ही उस पे लगने वाला फोर्स भी बढ़ेगा, और जो डिस्टेंस which is inversely proportional to the force, इसका मतलब है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स घटेगा। उनके कुछ नियम थे, फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन which is इनर्शिया। इनर्शिया मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी मोशन में है या रेस्ट में है तो वो हमेशा यही चाहेगा कि वो मोशन में ही रहे या रेस्ट में रहे। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो हमेशा चाहेगा कि वो मोशन में ही रहे। इसको हम देख सकते हैं कि जैसे अगर हम बस में बैठे हैं और जैसे अचानक से बस स्टार्ट होती है तो एक पीछे की तरफ हमें एक फोर्स फील होता है कि हमारी ऊपर की बॉडी पीछे की तरफ चली जाती है और नीचे की बॉडी उसी के साथ रहती है। मतलब कि जो हमारी नीचे की बॉडी है वो ऑब्जेक्ट के साथ मोशन में तो आ गई, लेकिन जो ऊपर की बॉडी रहती है वो नहीं आ पाती उसके साथ, इसलिए वो एक पीछे का फोर्स फील करती है। और सेकेंड लॉ है इनका विच इज मोमेंटम। मोमेंटम मतलब को भी ऑब्जेक्ट से जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो उसके मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। वेलोसिटी मतलब कि स्पीड, कि जैसे कोई भी ट्रक है और वो 5 मीटर पर सेकंड से आ रही है, तो अगर वो आपसे भिड़ जाती है तो उसका इम्पैक्ट आप पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा है। एक बुलेट ऑफ अ गन जिसका मास तो बहुत कम होता है, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी होती है यानी कि वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जब वो कांच की किसी विंडो से होके जाती है तो सिर्फ उतने दूर का जो स्पेस होता है वो खाली हो जाता है, बल्कि पूरी पूरा ग्लास नहीं टूटता, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज एक्शन एंड रिएक्शन, मतलब कि जो आप एक्शन करोगे उतना ही इक्वल रिएक्शन आपको मिलेगा। जैसे कि आप खड़े हो अर्थ पे, तो आपका जितना वेट है उतना ही फोर्स अर्थ भी आप पे लगा रही है, इसलिए आप खड़े हैं। अगर रिएक्शन नहीं होगा तो आप किसी भी चीज़ पे खड़े हो तो वो नीचे की तरफ ही जाएगी, ना कि आप बैलेंस कर पाओगे। तो बैलेंस करने के लिए कपल ऑफ फोर्स एक्शन एंड रिएक्शन लगता है।
देखा कितने अच्छे से आरजे मुस्कान ने इतनी साधारण चीज को, जो हम सबको पता होकर भी पता नहीं थी, और उसको कितने आसानी से समझा दिया, जो हम कभी सोच भी नहीं पाए कि इस तरीके से भी न्यूटन्स लॉ को पढ़ सकते हैं। ठीक इसी तरह अगर हम चाहें तो बहुत सारी चीज़ों को उतनी आसानी तरीके से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। जैसे कि एक शब्द के अधिक अर्थ, वो भी भिन्न भिन्न भाषाओं में, कैसा लगा आइडिया? अच्छा है ना? तो चलिए जान लेते हैं कुछ जाने पहचाने शब्द, वो भी अलग अलग अर्थ में। और वो शब्द लेकर आ रही हैं क्लास 11 से आरजे वर्षा।
सेल्फ रिस्पेक्ट, हिंदी में आत्मसम्मान, संस्कृत में स्वाभिमानी, उर्दू में खुददारी। लव, हिंदी में प्यार या प्रीति, संस्कृत में स्नेह, उर्दू में इश्क। ऑबिडेंट, हिंदी में आज्ञाकारी, संस्कृत में आज्ञापालक, उर्दू में तबे। रिसीव्ड, हिंदी में प्राप्त किया, संस्कृत में आवान प्रोति, उर्दू में अक्स। हेवन, हिंदी में स्वर्ग, संस्कृत में स्वर्गा, उर्दू में एडन।
चलिए हम लोग आ गए हैं हमारे शो के आखिरी पड़ाव पे, और इस आखिरी पड़ाव में एक चीज आपको बताना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि जिंदगी में कितनी भी कठिन परिस्थितियों में हम लोग खड़े क्यों ना हों, ये कभी भरोसा मत खोना, क्योंकि सूर्यास्त होते हैं लेकिन सूर्योदय जरूर होते हैं। चलिए अब वक्त आपसे अलविदा बोलने का है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कोरोना अभी भी गया नहीं है तो मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइज करते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। और अगर लॉकडाउन को फिर से नहीं बुलाना है तो घर से ज़्यादा मत निकलिए। चलिए गुड बाय, अलविदा, सुनते रहिए सरोजिनी नायडू रेडियो स्टेशन। गुड बाय। निगम मुख्यालय में जियो एक्सचेंज सिस्टम, सर्दी हो या गर्मी 23-27 के बीच बना रहेगा कमरों का तापमान। बेटों से ज्यादा बेटियों की चाह, ग्वालियर में 3 साल में 45 अनाथ बच्चे गोद लिए गए, इनमें शामिल हैं 27 बच्चियां। अंडर 19 वर्ल्ड कप, हमारी यंग ब्रिगेड टूर्नामेंट में 60 विकेट लेने वाली एकमात्र टीम, यश धूल को वर्ल्ड कप की मोस्ट वैल्यूएबल टीम की कप्तानी, इसमें 3 भारतीय शामिल। नहीं रही लता जी, 8 दशकों तक की 5 पीढ़ियों में सुरों की मिठास घोलने वाली लता मंगेशकर अब नहीं रही। सरस्वती पूजा के अगले ही दिन लता जी माँ सरस्वती में विलीन हो गईं। सुरों का यह हिमालय पिघलकर नदियों से बहकर सागर में मिलेगा और बादलों का रूप लेकर बरसता रहेगा अनंतकाल तक। देश में भी, दुनिया भर में भी सुर की लता अनंत है, अनंत रहेंगी।